ओम शांति। बहुत समय पहले एक चोर चोरी करने निकला और उसने जिस घर में चोरी करनी थी या कहो महल में चोरी करनी थी उसकी खिड़की को खोलने की कोशिश की और खिड़की को खोलते खोलते ही खिड़की का दरवाजा टूट गया और वो गिर गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। एक चोर चोरी करने गया महल में, खिड़की खोलते समय वो गिर गया और उसकी हड्डी टूट गई। तो उसने क्या किया, जो घर का मालिक था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कि इनके वजह से मेरी टांग टूट गई। तो जब मुकदमा चल रहा था तो न्यायाधीश ने कहा, बात तो सही है क्योंकि खिड़की किसकी थी और घर किसका था, तो घर का मालिक था उसी का दोष है। तो घर के मालिक को बुलाया गया कि घर के मालिक की वजह से ही चोर की टांग टूटी है। तो घर के मालिक ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस खिड़की को बनाने वाला जो बड़ई जो कारपेंटर है उसका दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है, उसको बुलाया जाए। तो उस बड़ई को बुलाया जाता है। वो कारपेंटर कहता है, वैसे तो काम मेरा ही था पर मेरे अंडर काम करने वाले बहुत सारे श्रमिक वर्ग भी है, जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति ने, खिड़कियां तो इतनी सारी थी, इस खिड़की को बनाने वाला वो खास जो एक व्यक्ति था वो है, उसको बुलाया जाए, उसी का दोष है क्योंकि उसने ठीक से खिड़की नहीं बनाई, तो उसको बुलाया जाता है। वो कहता है कि खिड़की तो मैंने ही बनाई पर मैं भी क्या करूं, जिस समय खिड़की बना रहा था उस समय एक स्त्री वहां से गुजर रही थी और मैं उसको देखने में लग गया, इसके लिए दोष मेरा नहीं है, उस स्त्री का दोष है। न्यायाधीश कहता है, बात तो सही है। तो उस स्त्री को बुलाया जाता है, उस स्त्री को कहते हैं कि तुम्हें देखने की वजह से ही ये खिड़की ठीक से नहीं बनी और खिड़की ठीक से न बनने की वजह से ही चोर जब घुस रहा था तो चोर की टांग टूटी, तुम्हें क्या कहना है। वो स्त्री कहती है, वैसे तो कोई मेरे तरफ देखता नहीं है पर उस दिन जो दुपट्टा मैंने पहना था वो दुपट्टा इतना अच्छा इतना सुंदर था, उस दुपट्टे का दोष है सारा, उसी के वजह से वो व्यक्ति मुझे देख रहा था। फिर न्यायाधीश सोचते हैं, अभी क्या किया जाए, दोष तो सारा दुपट्टे का है, तो दुपट्टे को रंगने वाला जो रंगरेज है, डाई करने वाला, उसका दोष है, उसको बुलाया जाए। तो वो जो रंगरेज होता है वो उसी स्त्री का पति होता है और वो जो पति होता है वही चोर होता है। तो एक चोर निकला चोरी करने, खिड़की खोली, खिड़की का दरवाजा टूटा, वो गिरा, उसकी टांग टूटी, उसने मुकदमा किया घर के मालिक पर, दोष घर के मालिक का है, घर का मालिक कहता है दोष बड़ई का है, बड़ई कहता है दोष मेरा नहीं, मेरे अंदर काम करने वाला जो कामगार है उसका है, वो कामगार कहता है दोष मेरा नहीं उस स्त्री का है क्योंकि मैं उसको देख रहा था, स्त्री कहती है दोष मेरा नहीं इस दुपट्टे का है, और दुपट्टे को रंगने वाले को बुलाया जाता है क्योंकि उसने रंगा है, और रंगने वाला कौन है, उसी स्त्री का पति और वही जो कि चोर है। वैसे तो कहानी अंतहीन तक चल सकती है, सूफी कथा है परंतु बहुत सारे रहस्य लिए हुए है, बहुत सूक्ष्म है, कर्म के सिद्धांत भी ऐसे ही है। कोई भी घटना जो हो रही है अकेले में नहीं हो रही है, संयुक्त है, हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। यदि सरहद पर कोई सिपाही मर रहा है तो हम जुड़े हुए हैं। जो भी कर्म संसार में हो रहे हैं सब संयुक्त है, कोई भी कर्म अकेले कुछ नहीं हो रहा है, सभी एक विशाल सागर है और सभी सागर की जैसे लहरें हैं। तो कर्म के जो सिद्धांत है बहुत बहुत सूक्ष्म है। और संडे की जो मुरली है वो किस पर है? कर्म पर। कर्म क्या है? वो दर्पण है। कौन सा दर्पण? यदि ये सारे दर्पण लगा दिए जाए और हमें उसके अंदर बिठा दिया जाए, हमारे ही कर्म चारों ओर, तो उसमें क्या नजर आएगा? हम ही नजर आएंगे, जैसे उस शीश महल में हुआ था। किसी राजा के पास एक शीश महल था, मिरर पैलेस, जिसमें आईने ही आईने थे, सब जगह इतने आईने, हजारों लाखों आईने। और एक दिन जब शीश महल के द्वार बंद होने थे, मिरर पैलेस, तो एक कुत्ता अंदर रह गया और दरवाजे बंद हो गए। और उस कुत्ते ने देखा, जहां तहां वही वही दिख रहा है उसे। कुत्ते ने अपना ही प्रतिबिंब देखा, अपनी ही छाया, अपना ही इमेज। और रात भर उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जहां देख रहा था वहां वही वही, उसे तो लग रहा था दूसरा कुत्ता है कोई, और वो भी इतने सारे कुत्ते। भोगता रहा, टकराता रहा, झगड़ता रहा, चिल्लाता रहा, रात भर भोगता रहा, कौन है ये सारे कुत्ते। और जितना वो भोगता था सारे कुत्ते उतने ही भोगते थे। उसे तो ये नहीं पता था ना कि ये आईना है। रात सुबह जब द्वार खुला तो मरा हुआ था वो कुत्ता वहां पर। यदि वो आईने कर्म है तो उसमें कौन दिखाई दे रहा है? आत्मा दिखाई दे रही है, हम ही दिखाई दे रहे हैं। हमारे भी कर्म इतने सारे अगर आईने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतने कर्म करता है, कभी कभी एक कर्म ना मिले दूसरे से, एक कर्म से लगता है बहुत महान है। जो एक ही आईना देखते हैं उनको लगता है ये व्यक्ति बहुत महान है, पर जो बहुत सारे आईने हैं, क्योंकि हर कर्म अलग अलग है, इतने सारे कर्म, अगर सभी कर्म आईने हैं और उस सब में आत्मा ही प्रतिबिंबित है, तो व्यक्ति देखकर कभी कभी घबरा जाएगा कि क्या ये मैं हूं। हर व्यक्ति जैसे कि खंडित व्यक्तित्व है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्किज़ोफ्रेनिक, हर एक व्यक्ति। यहां देखो तो महान योगी, यहां से बाहर जब जाए तो कुछ और। कितने उसके रूप है, हजारों रूप है उसके। व्यक्ति अगर खुद ही देख ले अपने आप को, उस जैसे उस कुत्ते को बंद कर दिया गया और अपने साथ अगर सामने लाए और वो आईने की भांति हमें दिखाई दे, तो भयभीत हो जाएगा कि क्या ये मैं हूं, क्या ये एक ही आत्मा है। और उसके इतने भिन्न भिन्न कर्म, कभी महान, कभी श्रेष्ठ, तो कभी एकदम नीच। श्रेष्ठ कर्म हो तो क्या होगा परिणाम? श्रेष्ठ प्रारब्ध और भ्रष्ट कर्म हो तो दुख। तो जैसे उस कुत्ते की गति, और वो विक्षिप्त हुआ और झगड़ता गया और पागल हो गया और अंततोगत वह मर गया। यदि सारे हमारे कर्म भी ऐसे हमारे सामने लाए जाए तो हम भी भयभीत हो सकते हैं। और एक सिद्धांत है कर्म का, कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि अपने कर्म का दोष किस पर डालता है? दूसरे पर। जैसे चोर ने किया, मेरा नहीं ये। वैसे तो चोर को अधिकार ही नहीं है, शायद वो भूल ही गया था किस लिए वो गुस्सा था। क्या उसे मुकदमा दर्ज करने का कोई अधिकार है? परंतु सबसे पहले तो वो ही गया, ये भी मनुष्य का एक स्वभाव है, इससे पहले कि दूसरे हमारी कंप्लेन कर दे, हम पहले पहुंच जाए। झगड़ा हुआ दो व्यक्तियों में, इससे पहले कि वो पहुंचे, दोष हमारा था, इससे पहले कि वो चला जाए हम ही पहले चले जाए, जैसे उस चोर ने किया, तो अपना दोष दूसरे पर डालना, ये एक स्वभाव है। ये सारे कर्म फिलॉसफी के छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत है, क्रिया कारण, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मास, बहुत कठोर नियम है वैसे कर्मों के तो, परंतु सूक्ष्म बहुत है और कोई भी इससे छूट नहीं सकता। तो कल की मुरली में क्या कहा बाबा ने सभी बताएंगे, पीछे से राहुल भाई क्या कहा बाबा ने, कौन किसको देख रहा है, सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं, सुप्रीम कमांडर अपनी शक्ति सेना को देख रहा है, आया भी किस लिए, शक्ति भरने के लिए आया है, और क्या कहा तो कर्म लीला, कर्म क्षेत्र, कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्म इंद्रिया, कर्म संबंध, कर्म योग, कर्म क्षेत्र पर क्या करना है, सभी कर्मों को कर्म योग बना देना है और कर्मेंद्रिया शीतल कर देनी है और कर्म भोग चुक्त करना है और कर्म संबंधों को क्या करना है, मधुर कर दो, पवित्रीकरण, दिव्यकरण, उदात्तीकरण, डिवाइनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, सभी जो संबंध है हमारे वो साधारण संबंध ना रहे, वो लौकिक वाले संबंध ना रह जाए। एक दोष जो देखा गया है, शायद ही इसकी कभी चर्चा की है आज तक, हमने भी नहीं की, यहां जो परिवार के परिवार कुछ कुछ समर्पित है उनके बीच में लगाओ, उनके बीच में घनिष्ठ लगाओ, माँ का बेटे से, बेटे का भाई से, भाई का बहन से, कहां भी जाएंगे तो साथ साथ। जब जगदीश भाई पहली बार यहां आए थे और देखा था मम्मा भी है, यशोदा मैया भी है और बाबा भी है, वो समझ नहीं पा रहे थे इन सबका आपस में क्या संबंध है, वो दिखाई नहीं दे रहा था इसका उससे क्या संबंध है, परंतु एक जो सूक्ष्म माया है वो ये है, यहां यदि परिवार के परिवार है तो ये पता ना चले कि कौन माँ है और कौन बाप है और कौन भाई है और कौन बेटा है, मालूम ना पड़े, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो कितनी अनासक्ति है अंदर से, यहां तो वो जैसे ग्रुप के साथ चल रहे हैं जैसे एक व्यक्ति था, इसके पहले भी कभी सुनाया था, उसको एकदम से वैराग आ गया, वैराग भी इसलिए आया कि माँ बाप बहुत पीछे पड़े रहते थे हर चीज के लिए, तो क्षणिक वैराग आया और सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना है, बहुत हो गया ये, जहां देखो वहां बहुत पीछे पड़े रहते हैं माँ बाप, और वो बीच बीच में कहता तो था पर लेता नहीं था, और एक दिन अचानक से गायब हो गया घर से, और वहां पर ही महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे कुछ समय, कुछ दूरी पर, और बुद्ध के संग में जाके संन्यास ले लिया। फिर माँ और बाप दोनों इतने परेशान हुए, इतना मोह था बच्चे में, ढूंढने लगे बेटे को कहाँ है, तो पिता ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले, तो फिर उसको याद आया ये संन्यास की बात करता था और सुना कि बोधुओं का संग, बुद्धों का संग यहाँ पर आया हुआ है, वो जाता है वहां पर और पाता है कि मेरा बेटा तो यहाँ है, और वो कहता है महात्मा बुद्ध से कि मुझे भी संन्यास लेना है, संन्यास उसको वैराग आया नहीं है क्योंकि बेटा वहां है तो बेटे के साथ रहना है, तो वो उसके साथ रहने लगता है। फिर माँ इधर परेशान होती है कि पिता भी नहीं आए, कहाँ गया पिता कितने समय से, तो वो ढूंढने निकलती है, फिर पता चलता है कि उसका बेटा कहता था संन्यास लूंगा, तो वो सोचती है कि शायद यहाँ लिया होगा, जाता है, जाती है तो देखती है दोनों माँ, बेटा और बाप दोनों वही है, वो जाती है, वो कहती है मुझे भी संन्यास लेना है, तो वो भी संन्यास्त होती है। फिर तीनों ही साथ में रहते हैं, सुबह सुबह साथ में ही उठना, साथ में ही भिक्षा मांगने जाना, साथ में ही बातें करना, साथ में ही भोजन करना, वहां पर ही गृहस्थी स्थापन कर दी। और फिर जैसे वो दूध तक बात जाती है तो वो उसको बुला के कहते हैं ये तुम्हारा कैसा संन्यास है, तुम लोगों का परिवार के परिवार है परंतु वो ही सारी चीजें कर रहे हैं जो संसार में कर रहे थे, ये कैसा संन्यास है। अनासक्त संन्यास में, वैराग में, अध्यात्म में सर्वोच्च स्थिति आत्मा की है अनासक्ति। हर बात से अनासक्ति, या यहां तक कि कर्म किया उससे भी अनासक्ति। कर्म कर दिया बस। एक बहन ने बीच में फोन किया था कि यहां जो क्लासेस होती है तो उसका तमिल में ट्रांसलेशन करें क्या हम लोग, तो कहा करो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है, हमने कह दिया, अभी उसका जो होने आया वो करो आप लोग, वो पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आए यहां या जो भी क्लास कर, ये भी एक आसक्ति हो जाती है, उस क्लास में आसक्ति। क्लास कराई एक माता या एक बहन ने, क्लास एक बार यहां कराई थी और बाद में बाप रे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा उसने। वो क्लास क्या करा दी कि पता नहीं क्या करा दिया, तो उस क्लास में ही इतनी आसक्ति हो गई, उस कर्म में ही आसक्ति हो गई, करा दी जो प्रेरणा आई उस समय, बोल दिया काम पूरा फुल स्टॉप, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों करे। सूरज भाई जी ने भी एक बार अनुभव सुनाया था, एक माता को कहा गया ज्ञान सरोवर में सामने आके गीत गाए, गीत गाया उसके बाद में उसने जब देखो तब एक ही बात, गीत गाया, जैसे पता नहीं लोग जिन्होंने सुना वो तो भूल भी गए, परंतु उस क्लास में ही, उस गीत में ही, उस कर्म में ही आ सकती। कर्म हो गया, पूरा हो गया, जो करना है करो, उसका उसमें भी आ सकती नहीं, हमने ये कहा वो कहा। अच्छा अगर गलती है तो सुधारने वाले तो बैठे हैं सारे, क्या गलती है कि बोलते समय बहुत है बैठे हुए, वो सुधार देंगे, तो वो भी आ सकती ना हो। तो हम बात कर रहे थे, कहां थे हम, कर्मयोग, कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध की बात कर रहे थे। हमारे संबंध जो है, संबंधों का माधुर्य, संबंधों में सौंदर्य जो है वो है अनासक्ति का। यदि संबंधों में फैमिलियरिटी है, हर संबंध में स्पेस होनी चाहिए, गैप, तो ही वो सुंदर रहेगा। जो लोग रोज ही मिलते रहते हैं, रोज ही बात करते रहते हैं, इसमें रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे कम होता है। हम बात कर रहे हैं फैमिलियरिटी की, घनिष्ठ बातें, पर्सनल टॉक्स, ज्ञान की बातें नहीं, पर्सनल टॉक्स, व्यक्तिगत बातें, वो जो बातें होती है उनमें आसक्ति होती है, लगाव होता है, वो बातें जो हो जाने के बाद भी बुद्धि में मन में गूंजती रहती है, याद आती रहती है, वो सारी बातें, वो वाली बातें नहीं। हाँ, वो छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। इसके लिए और बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होती है कि जो गुप्त रखनी चाहिए, सीक्रेट्स होती है, वो सामान्य वार्तालाप में निकल जाती है बाहर, और उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। फिर जैसे हमने कोई बहुत श्रेष्ठ अंदर संकल्प किया है कि मुझे अपने योग का चार्ट 4 घंटे तक बढ़ाना है, ये बहुत श्रेष्ठ संकल्प है और हमने उस पर काम करना चालू कर दिया है, परंतु बात बात में हमने बोल दिया कि मैं ऐसा सोच रहा हूं और दूसरों ने उसकी हंसी उड़ाना चालू कर दी, बड़े आई योगी बने, तो वो जो संकल्प में जो पावर थी हमारे वो कम हो जाती है। याद तो कराता है, परंतु ऐसा एक उदाहरण ये दिया तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। पुरुषार्थ के जो संकल्प है, साधना के जो संकल्प है, गहन अनुभूतियां है, वो सूक्ष्म होती है, शब्दों में आते ही डाइल्यूट हो जाती है। तो बाबा ने क्या प्रश्न पूछा है? हर एक ने शक्ति कितनी धारण की है, शक्तियां कितनी धारण की है। टाइटल क्या दिया सारी मुरली किस समान पर है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। केवल कहने मात्र नहीं, केवल कहे घर बैठे कि मैं होशियार हूं वैसा नहीं, केवल कहे घर बैठे कि मैं बहुत बलवान हूं या शक्तिशाली हूं या फिर योद्धा हूं और रणभूमि में जाए और परास्त या भाग के आ जाए, शस्त्र डाल दे या हार जाए, ऐसे को कोई नहीं कहेगा कि ये शक्तिशाली है। जैसे कल भी बता रहे थे, विदेश में बहुत सुंदर छोटे बच्चों की कहानियां हैं, डॉन क्यूहोटी की कहानी है कि वो एक व्यक्ति होता है, वो किताबें पढ़ते रहता है। कौन सी किताबें? शूर गाथा है, वीर गाथा है, नाइट्स जो होते हैं ना, जो योद्धे, उनका ही पराक्रम पढ़ते रहता है। पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है, दिन रात पढ़ते रहता है, और फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं ही वो योद्धा हूं और मुझे इस संसार को बचाना है। ऐसे उसको सारी चीजें होने लगती है अंदर ही अंदर। तो वो बुढ़ापे में वो डॉन क्यूहोटी क्या करता है कि वो वैसे वस्त्र पहनता है पूरे योद्धाओं के जैसे, एक घोड़ा लेता है और निकलता है संसार की रक्षा करने के लिए, तारनहार जैसे बनकर। चेयर है ना वहां पर? कोई तो ट्रांसलेट करे। तो वो घोड़े पर सवार रोसिनांटी, उसके घोड़े का नाम, और उसका जो एक नौकर होता है नेबर सैंचो, उसको भी ले लेता है, बोलता है मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूं, अगर तुम मेरे साथ चले तुमको बहुत बढ़िया मैं इनाम दूंगा। और वो जाता है और ऐसे दिखाया है उसमें कि ऐसी ऐसी चीजें करता है वो कि जो सब काल्पनिक है। सामने दिखता है एक पवन चक्की, विंड मिल होती है, उसको लगता है ये बहुत बड़ा राक्षस है, मैं इसको मार दूंगा, ये इस देश का बहुत हानि कर रहा है ये। और जाता है वो समझाता है उसको कि अरे ये तो वो है पवन चक्की है, विंड मिल है, वो कोई राक्षस नहीं हो। कहते चुप, तुम बेचारे ना समझो। और वो जाता है घोड़ा लेके पूरा, क्योंकि उसको इतना नशा चढ़ जाता है, दिन रात ही वो सारी गाथाएं पढ़ पढ़ के कि मैं बहुत बड़ा शूरवीर हूं, और टकराता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं जाती है। बाद में और निकलता है, सेकंड चैप्टर में दिखा है, वहां पे थोड़ी भेड़ होती है, वो चरती रहती है, वो कहता है ये सारे राक्षस है, इस पृथ्वी को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। जाता है और उन बेचारे सब तलवार से उनको भगाता है, और फिर वहां से ऐसे बिल्कुल गर्व के साथ सारे लोग उस पे हंसते हैं। तो वो तब भी नहीं समझता है, उसको लगता है ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं देखो ये पागल जा रहा है वगैरह वगैरह। तो कहने का भाव उसमें दिखाया है कि वो पढ़ते 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 बुद्धि में घुस जाता है उसके कि मैं ये हूं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं रहता है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और कर्म में वो प्रत्यक्ष ना हो तो कौन मानेगा? कर्म ही क्या है? दर्पण है। कर्म ही क्या होंगे? हमारी पहचान बनेंगे। कर्म ही विश्व के आगे पहचान बनेंगे, क्योंकि संसार की लोग सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि इसको नहीं जान सकते। उनके सामने जो दो स्थूल शक्ति है, कर्म शक्ति है, उसको ही वो पहचानते हैं। तो कर्म कैसे हो, कल भी चर्चा कर रहे थे, हमारे कर्म कैसे हो। महान कर्म किसे कहा जाएगा, श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाएंगे? कल तो कुछ बातें सुनाई थी, आज दूसरी बातें। एक तो वो कर्म जो अनासक्त भाव से किए जाए, वो कर्म जिसमें साक्षी भाव हो, ऐसे सारे कर्म हो कि वो कर्मों के करने के बाद पश्चाताप का भाव ना हो। श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाएंगे? क्योंकि अगर विश्व भर के इतिहास को देखो तो जो चीज यहां मान्य है वो किसी और देश में मान्य नहीं है। जो जैन धर्म करता है ये महान कर्म है, हिंदू धर्म कहता है वो नहीं है, बौद्ध धर्म करता है ये महान कर्म है, परंतु दूसरे धर्म कहते हैं ये महान नहीं है। हर इसमें अलग 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 है। कोई देश कहता है ऐसा है, कोई देश कहता है वैसा है, कोई सभ्यता कहती है ये कर्म महान है, कोई सभ्यता कहती है वो कर्म महान है। तो महान कर्म कौन से है? या फिर निकृष्ट कर्म कौन से है? वह हर कर्म वो जो करने के बाद दिल खाता है, वो कर्म करने के बाद अंतकरण में पश्चाताप का भाव उठता है, वो सभी कर्म इमोरल, निकृष्ट, निचले, कनिष्ठ, वो सभी कर्म छोटे कर्म है। अगर एक परिभाषा दी जाए व्हाट आर इमोरल एक्ट्स, कि वो सभी कर्म जो किया और फिर पश्चाताप हो, जो हमारे स्वभाव के विपरीत कर्म है, अगर एक शब्द में परिभाषा देनी चाहिए तो। विश्व भर में ऐसे कई सारे सिद्धांत है, वहां ऐसे कई सारे महान लोग कहो या जो भी वो लोग आए, उन्होंने मानवता को भ्रमित किया है। जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, मार्क्स कहता है समाज जिम्मेवार है जो कुछ हो रहा है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है, व्यक्ति खुद जिम्मेवार नहीं है। क्यों? किसी ने अपराध किया, वो कहता है मेरी मां ने मुझे नहीं सिखाया कि ये पाप कर्म है, इसके लिए मां जिम्मेवार है। तो एक तो समाज को दोषी समझना, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, या फिर सिगमंड फ्राइड कहता है पर दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार। तो ये संसार में इस तरह की सिद्धांत चले आ रहे हैं, इसके लिए पाप भी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो कर्मों में अनासक्त भाव और कर्मों में साक्षी भाव, ये दो महान कर्म के निशानी है। और कल कुछ बातों की चर्चा की थी, वह सारे कर्म जो आत्म अभिमानी स्थिति में किए जाए, वो सारे कर्म जो बाबा की याद में किए जाए, वो सारे कर्म जो श्रीमत अनुसार हो, वो सारे कर्म जो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, वो सारे कर्म जो निमित्त भाव से किए जाए, वो सारे कर्म जहाँ पर नम्रता हो, और वो सारे कर्म जहाँ त्रिकालदर्शी की स्थिति हो, वो सभी कर्म महान है। बाबा ने कहा अपने कर्मों को चेक करो, शक्ति संपन्न है, किस अवेयरनेस से कर रहे हैं कर्म, क्या उसमें शक्ति दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि वही हमारे दर्पण है। और इस लोक की विशेषता क्या है विट्ठल भाई, इस लोक की विशेषता और उस लोक की विशेषता, कर्म, और वो लोग उस लोक की विशेषता कर्म से अतीत, और उस लोक की विशेषता है परम धाम की विशेषता है पूर्वी बहन, परम धाम की निरसंकल्प अवस्था, और उस लोक की विशेषता कर्म ही नहीं है, मौन है, और उस लोक की विशेषता विश्राम है, आराम है, आवाज नहीं, आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कर्म नहीं, अकर्म विकर्म कुछ नहीं। हाँ, तो ये सारी उस लोक की विशेषता है। उस लोक में टिकने के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि आत्मा पर कर्मों का यहाँ बोझा है, हम जो भी करते हैं, वृत्तियां, वृत्ति होती है ना, सर्कल्स या रिपल्स, तरंगे उठती ही रहती है। वास्तव में योग अर्थात ये तरंगों का रुक जाना, इसके लिए परम धाम की स्थिति है, वहां पे कोई संकल्प भी नहीं है, बियॉन्ड थॉट्स, उसी अवस्था में चित्त स्थिर होता है, बस कुछ भी नहीं, कोई संबंध भी नहीं, न परमात्मा से न किसी से, केवल मैं आत्मा, बस संपूर्ण वो जो अवस्था है, उसी अवस्था में विकर्म विनाश होते, न्यूट्रलाइजेशन होता है पुराने सारे कर्मों का, अब तक के किए हुए सारे कर्म, सम टोटल सारा वो संचित, वो सारा इस जन्म का प्रारब्ध, प्रारब्ध और आज दिन भर का क्रियामान, आज के जो सारे कर्म है वो सारे अगर नष्ट करने, न्यूट्रलाइज करने हैं, नहीं तो जो भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते, निरंतर चालू रहता है, ये सोचना भी कर्म है, फील करना भी कर्म है, सब कुछ कर्म ही कर्म है। कर्मातीत अर्थात उस स्थिति का यहाँ अनुभव करना, ये मैं आत्मा परम धाम में हूँ, कर्म भी नहीं, संकल्प भी नहीं, कोई भावना ही नहीं, कुछ नहीं, केवल आत्मा, बस न्यूट्रल, वो जो स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी है वही कर्मातीत स्थिति है। तो उस लोक की विशेषता कर्म से परे, इस लोक की विशेषता है कर्म। और वो जो पांच बातें बाबा ने कही कर्म के बारे में, कर्म संबंध, कर्म योग, कर्मेंद्रिया, कर्म भोग, कर्म क्षेत्र, यह कर्म क्षेत्र इस कर्म लीला में चेक करो कि सर्वशक्ति संपन्न हूं, अपनी संपन्नता का और अपनी संपूर्णता को अल्पलेखपन की वजह से कम ना करो। कितना अच्छा वाक्य है, अपनी संपन्नता को कम नहीं करो। हर एक संपन्न है, हर एक संपूर्ण है। ये भाव कि मैं हूं पहले से ही संपन्न हूं, ये तो मिट्टी है बीच में आ गई है। हर एक संपन्न है, हर एक संपूर्ण हूं। जेन मास्टर था एक बोकाजो। बोकाजो ने एक बार कहा कि हर एक व्यक्ति जो है परफेक्ट है। तो उसके शिष्यों में एक सन्यासी था जो कि हंच बैक कुबड़ा था। उसने कहा, मास्टर मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम कहते हो कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट है, आई एम हंच बैक। तो बोकाजो कहता है, तुम्हारे जैसा हंच बैक, जो जितना तुम परफेक्टली हंच बैक हो, जितना जितने कुबड़े होंगे संसार में उसमें से तुम सबसे परफेक्ट हो। यू आर द मोस्ट परफेक्ट हंच बैक इन द वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति जो है वो परफेक्ट है। आज तो हर एक व्यक्ति परफेक्ट है। तो वो संपन्नता को, वो संपूर्णता को कम ना करो। अपनी संपन्नता को हम क्यों कम कर देते? अपने अल्पलेखन की वजह से। एक व्यक्ति हमारे पास है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, पर मुझे अभी अभी पता चला, उसने मुझे कहा कि मेरे आसपास ही रहता है, मैं जहां रहता हूं, तो वो अमृत वेला उठ ही नहीं रहा है। तो उसने मुझे अचानक उस दिन कहा कि तुम जाते हो ना अमृत वेला, मेरे दरवाजे पर जोर से ठक ठक करके जाना। तो वैसे मैंने किया, फिर उसके बाद में उसी दिन यहां पर दिखा वो मुझे। तो वो अपना अनुभव सुना रहा था, कितने महीने हो गए रोज मैं 5 बजे उठ रहा हूं। अब ये भी बात मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो निकल जाता, फिर वहां क्या होता है। तो हम तो सोचते अपने घर पे करता होगा, पर वो कहता है अपना अनुभव इतना सुना रहा, इतना सुना रहा, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। अमृत वेले का। तो अपनी ही संपन्नता को और अपनी ही संपूर्णता को हम ही अपने अलबेलेपन से कम कर देते, छोटी छोटी सी अलबेलापन। वैसे ही वही व्यक्ति मुझे शाम को योग में दिखता नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि तुम रोज दिखते हो 7:30 बजे, जो योग पूरा होता है तब तुम एंट्री करते हो, तो कल से पहुंच जाना बराबर 6:30 बजे। तो दूसरे दिन बराबर आ गया। तो, और फिर उसके अनुभव चालू हो गए, ये हुआ वो हुआ। तो हर व्यक्ति संपन्न संपूर्ण है, चाहे कैसा भी हो, परंतु अलबेलेपन की वजह से हम अपनी संपूर्णता को ही ढकेलते हैं दूर। तो ये बात। फिर इसका कारण क्या है? मुरली का दूसरा चरण, पहला तो कर्म क्या है, कर्म की विशेषता क्या है, और दूसरा चरण है कमजोरी। कोई ना कोई कमजोरी की वजह से क्या होता है, कोई ना कोई कमजोरी की वजह से वो शक्ति अप्रत्यक्ष नहीं होती है। बाबा ने एक वृक्ष जैसे बनाए हैं, जिसमें एक बीज है, कुछ जड़े है, उसकी रूट्स है, वो ट्रंक है, उसका तना है, पत्ते है। तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी, और क्या क्या करते हैं सब लोग अपनी अपनी कमजोरी के साथ, अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। एक तो छिपाते हैं, और छिपाने की वजह से क्या होता है, प्रश्न नंबर 4, ज्ञान छोड़कर जाने का कारण नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, क्या कारण है दूसरा ज्ञान छोड़कर जाने का? पहला तो है बैलेंस नहीं रख पाते, दूसरा है अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, और छिपाते फिर दिल शिकस्त हो जाते, दुखी हो जाते, और फिर एक दिन ज्ञान ही छोड़ के चले जाते। एक कमजोरी थी, ऐसा लगता है, डर लगता है, मेरी ऐसी कमजोरी कैसे बताऊं किसको, लोग क्या कहेंगे, ये ब्राह्मण परिवार क्या कहेंगे, उनको लगता है ब्राह्मण परिवार बहुत ही आगे है मेरे से, मैं ही सबसे पीछे हूं। परंतु हर व्यक्ति जो इस परिवार में आया है, जो इस ब्राह्मण परिवार की यात्रा है, हर व्यक्ति की लगभग समान है। हर एक को हर चीज से गुजरना पड़ा है, निंदा से, ग्लानी से, परीक्षा से, टेस्ट से, आरोप से, कलंक से, सबको गुजरना पड़ा है। ब्राह्मण जीवन की ये जो यात्रा है, पहले हम कैसे कैसे थे, डेनिस बहन का एक बहुत सुंदर आर्टिकल है उसमें लिखा उन्होंने कि पहले ब्राह्मण जब बनते तो फैनेटिक बीकेज होते, कट्टरवादी बीके, वहां से यात्रा चालू होती है कि बस यही ज्ञान है, ये सबको यही बताना चाहते हैं कि तुम सब गलत हो, हम राइट है, फैनेटिक कट्टरवादी था। फिर धीरे धीरे वो बीके की जो जर्नी है, जन्म होता है फैनेटिक बीके के रूप में, और फिर धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आती है, आगे आगे ज्ञान में चलते 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 चलते, और फिर वहां पर कर्म बंधन चालू होते, नए नए परिवार में, इस परिवार में कर्म बंधन चालू होते, और वो सारे बंधनों से कैसे आत्माएं अगर छूटना चाहे तो भी छूट नहीं पाती और बंध जाती है यहीं पर। उदाहरण दिए है दादियों के, दादियां इतने समय से है परंतु दादियों का जीवन देखो, जब से वो ज्ञान में आए और अब तक कैसा जीवन, कितना उनका अनासक्त जीवन है, सबके बीच में रहते, उन्होंने वो सब कुछ सहन किया जो हम सहन कर रहे हैं, और या फिर हमसे कई गुना ज्यादा। हमको तो ऐसे छोटे मोटे कलंक और आरोप और ये सब लगते हैं, उसमें ही पूरा फा हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है हमसे कई गुना अधिक, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खाली उनको दूर से देखते हैं, स्टेज पर बैठे स्पीच दे रहे, आसपास जाओ तो पता चले क्या क्या हो रहा है। एक बार तो हमें याद है बाबा आ रहे थे, 6:30 बज गए थे, तो जानकी दादी की तबीयत इतनी खराब थी, इतनी खराब की क्या बात नहीं पूछो, बिल्कुल इतना पेट दर्द, ये हो रहा था वो हो रहा था, बिल्कुल पूरा जान ही नहीं थी बस। अब दादी तो मतलब वो कहते हैं ना बीच बीच में बाबा ने क्यों रखा वगैरह वगैरह, तो वो सारा चल रहा था कि बस अभी तो बाबा आ रहे, सब कह रहे दादी क्या करे अभी, तो गुलजार दादी आए, फिर अभी लगभग 7:15 बज गए थे तब तक, इधर बाबा मतलब आने का, दादियों के आने का टाइम हो रहा था, गुलजार दादी आके दोनों बैठे रहे, दृष्टि देना चालू था, इधर सबके संकल्प चालू थे अभी कब तक चलेगा ये, तो चलना है कि नहीं चलना है, क्या करे क्या नहीं करे, तो वो सारा इधर चालू है, और दादी कह रही है कि बिल्कुल मैं तो उठ ही नहीं सकती वगैरह वगैरह, इतना पूरा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द था उस समय, तो वो इंजेक्शन जो भी देने थे दिए वगैरह वगैरह सब कुछ किया, और फिर गुलजार दादी ने उसको मनवा लिया कि चलना ही है, और फिर तो हम वहां से निकल के आ गए 7:30 बजे और यहाँ आके बैठ गए, और फिर स्टेज पर दादी आई, मैंने कहा ये कौन है, ये अभी तक वहां बैठे कैसे थे और यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है लोगों के सामने बिल्कुल वो जैसे नॉर्मल जैसे होती है ना, वैसे ही वहां से आ रहे दोनों, तो वो अजीब, मतलब जब तक हम उनके आसपास अगर देखे ना तो बहुत सारी परिस्थिति है, पर दूर से तो लोगों को तो कहां पता भी नहीं चला होगा कि अभी 5 मिनट पहले ही इतना बीमार है, और वो सब हुआ उंगली चली और पूरा हो गया, उधर गए फिर वापस चालू हो गया हरेक को सब चीजों से गुजरना होता है, तो कमजोरी, अपनी कमजोरी के बीच को क्या करो, कोई लोग क्या क्या करते हैं कमजोरी को, कोई छिपाते हैं, दूसरे क्या करते हैं टाल देते हैं, चलाते हैं, और क्या करते हैं, कोई चर्च टालते हैं, चलाते हैं, चिल्लाते हैं, और क्या करते हैं कमजोरी को, साधारण तरीके से कौन सा संगठन धारणा युक्त संगठन में साधारण रीति से सुनाते हैं, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो कभी कभी अमृत वेला मिस हो जाता है, इतना साधारण रीति से बता देते हैं, कभी कभी तो मेरा भी मिस हो जाता है, कभी कभी तो मेरा ये हो जाता है, कभी कभी वो हो जाता है, जैसे वो हाँ मतलब बहुत ही साधारण रीति से हमारा तो हो ही जाता है ऐसा देखेंगे वगैरह वगैरह, सिंपल इसमें, या फिर सिमिलर पुरुषार्थियों का संघ, तीव्र पुरुषार्थियों का संघ होता है, उसमें भी साधारण रीति से बोलते हैं, तो कुछ लोग ऐसा करते, कुछ लोग जानते हैं, समझते भी है अपनी कमजोरी के बीच थे, परंतु क्या नहीं कर सकते, भस्म नहीं कर सकते, जला नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, उस समय क्या करो, जो सेकंड नंबर की आत्माएं है, ज्वालामुखी स्वरूप की आत्माएं, वेरीफाई और प्यूरिफाई करो उस समय, उनसे सत्यापित करके करेक्शन बाबा से जोड़ नहीं सकते। पिछले संडे की मुरली में भी था ना एक प्रश्न कि कुछ आत्माएं पुरुषार्थ में रुकावट आती है, वो पहला प्रश्न है एक्चुअली, इस मुरली में जो 4 प्रश्न है वो 14 तारीख से है, और जो पहला था वो पिछली मुरली में था, ये जो प्रश्न इस मुरली से नहीं है, 14 तारीख की मुरली की है। तो जब आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है, माया से हार हो जाती है, उस समय बाबा से पावर लेने की शक्ति नहीं रहती है, कनेक्शन जोड़ने की भी पावर नहीं है। तो हेल्प के लिए हेल्प, दूसरी आत्माओं से हेल्प लेना है उस समय, उसको सुनाना है जिसपे विश्वास है उससे। ऐसे नहीं कि किसी के पास भी चले गए और वो बस जग जाहिर कर दे हमारी कमजोरी। जो ज्वालामुखी आत्मा है सेकंड नंबर की, उनके पास जाओ, जिनका कनेक्शन है, धारणा युक्त आत्मा है, उन्हीं से लो। तो ये ऐसा करती है। अभी प्रश्न ये है, इस बीज को नष्ट कैसे करें? पता चल गया ये बीज है, ये कमजोरी है, इसको कैसे नष्ट करें? इसका उत्तर मुरली में नहीं है, ये चिंतन का विषय है। श्याम भाई क्या करें? एक कमजोरी है पता चल गई, ये बीज है। देवेंद्र भाई क्या, कैसे नष्ट करें उसको? बाबा ने कहा ना, क्या करते हैं, टाल टालिया शाखाएं काटते रहते हैं और परिस्थितियों का पानी मिलता है तो फिर आ जाती है, फिर से झाड़ खड़ा। और ऐसा लगता है अरे अभी तक है, अभी तक। एक तो ऐसा भ्रम हो गया था कि वो खत्म हो गई, वो कमजोरी समाप्त हो गई, परंतु वो अचानक से अगर आ जाए कुछ महीनों के बाद तो लगता है अभी तक वैसे की वैसी है, फिर उदासी। जैसे रोज अमृत वेला कर रहे एक दिन अचानक लेट हो गया तो ऐसा लगता है देखो इतने साल करने के बाद इतने भाषण दे दिए अमृत वेला पर, फिर भी वही हाल, उदासी। क्या करे, बीज को कैसे भस्म करे? विट्ठल भाई समझ, बाबा ने तो कह दिया जानना अर्थात समाप्त करना। जानने का लेवल कितना है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण जान जाना अर्थात उससे मुक्त हो जाना। जैसे क्रोध, क्रोध को संपूर्ण जान लिया अर्थात उससे मुक्त हो गए। संपूर्ण जानना पर, आधा नहीं, क्योंकि संपूर्ण जानने के बाद वो व्यर्थ हो जाता है। जो व्यर्थ है उसको हम कैसे धारण कर सकते हैं? जैसे बाहर का खाना छोड़ दिया ना, क्योंकि व्यर्थ हो गया, वो कोई संकल्प नहीं, अपने आप ही छूट गया वो। अभी संघर्ष नहीं है बाहर क्या बन रहा है, बाहर वो बन रहा है पर मैं देखूंगा नहीं, वहां से जाते समय मार्केट से गुजरूंगा पर उधर देखूंगा नहीं, खुशबू आएंगी तो भी बिल्कुल संकल्प नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब इससे ही मुक्त हो गए। वैसे ही काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी वैसे ही छूट जाए, क्योंकि व्यर्थ हो गई, उनको जान लिया इनका स्वरूप क्या है। तो एक तो उसको जानना, बीज को नष्ट करने के लिए उसको जानना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी कि ये क्या है, क्या ये सबको है या केवल मैं ही हूं एकमात्र निराला। और एक तो जानना, दूसरा उसके आगे, हाँ उसके विरुद्ध, इसको कहते हैं अवर्शन थेरेपी, उसके प्रति एक रीति से नफरत क्रिएट करना मन में। अवर्शन थेरेपी, जैसे कोई बीड़ी पीता है ना तो उसको बीड़ी से क्या क्या नुकसान, सिगरेट से क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में पढ़ते रहो, अवर्शन थेरेपी, ताकि उसको घृणा हो जाए उससे। देखे तो बिल्कुल, हमने देखा कई सारे मरीज हमारे पास है जो इतने समय से ये थे, सारे व्यसनी थे, पर आज उनको ऐसी अवस्था आ गई कि बाजू में अगर कोई पी रहा है बीड़ी तो वो सहन नहीं कर पाते उसको, इतनी अवर्शन, इतना उसके प्रति घृणा, उन विकारों के प्रति, उस कमजोरी के प्रति। ये दूसरा, तीसरा उसके दृढ़ता से वो उसके पीछे, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, दृढ़ता से काम करना है। जैसे एक वर्कशॉप बनाना है हमको, एक काम करना है, जैसे हमने एक पूरा प्रोजेक्ट ही ले लिया, पूरा हमारी एक कमजोरी है, अभी किसी का अमृत वेला होता नहीं, कई सारे प्रश्न रहते कि मेरा अमृत वेला नहीं होता क्या करो, उसको एक प्रोजेक्ट बना लो कि क्यों मिस हो रहा है मेरा अमृत वेला, काम करो, अमृत वेला की किताब है, दिन रात वो किताब पढ़ो, इतनी तक वो किताब पढ़ो कि उसकी एक एक लाइन याद हो जाए। सर बाहर के लोग 8 घंटा सोते हैं, योगियों की नींद आधी होनी चाहिए, एक एक लाइन उसकी हमारे इसमें, ताकि इसी मुरली में कहा है ज्ञान को पॉइंट के रूप में यूज नहीं करो, किसमें यूज करो, शस्त्र के रूप में यूज करो, वेपन के रूप में उसे यूज करो। केवल नॉलेजफुल बनने से नहीं होगा, शक्ति रूप बनना होगा। तो प्रोजेक्ट, एक कमी जो कमजोरी है उस पर काम करना, हाथ धो के पीछे पड़ जाना उसके, ताकि वो कहे भाई मेरा पीछा छोड़ो, बहुत हो गया बस। तो ये तीसरा, चौथा बीज को नष्ट कैसे करें। हाँ ये सबसे है, जिन्होंने इस कमजोरी को छोड़ दिया, जैसे किसी को काम विकार ही दिन रात सताते रहते हैं, स्वप्न में सताता है, दिन भर सताता है, चलते फिरते सताता है, सारा कुछ कर लिया परंतु मुक्ति नहीं हो रही, सब कुछ कर लिया। प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कुमारों के, तो बहुत सारे प्रश्न है इसी पर कि क्या करे, सब कुछ कर लिया, पता सब कुछ है, किसी भी क्लास में उत्तर मिलता ही नहीं, सुन लिए बहुत सारे क्लासेस, कहीं पर भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो वो तो जानना तो है ही, उसको जानना, उन आत्माओं का संग करना जो उससे मुक्त हो चुके, ऐसी आत्माएं हैं बहुत सारी है, कि जब वो अभी वो उनका उससे कोई काम ही नहीं, उनका वो उससे ऊपर उठ चुके, ऐसी आत्माओं का संग करते ही अपने आप चेतना ऊपर उठ जाती है। तो ये एक है, और पांचवा अंतिम, हाँ उसको देखना आंखों, बिल्कुल प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना संस्कृत में कहते हैं उसको, कि जिससे भय है उसको देखना, उससे भागना नहीं, आंखें नहीं बंद कर देना कि मुझे देखना नहीं है ये। डराना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु डरना नहीं कोई चीज से, हर चीज इतनी डरावनी नहीं होती है जितनी वो दिखती है या दिखाती है। वो कहा था ना वो स्त्री, उसके पीछे स्वप्न में परछाई भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, और उसको पता नहीं कौन सी है। एक दिन वो देखती है परछाई को, और परछाई को पूछती है तुम कौन हो, उस राक्षस को, वो कहते मुझे क्या पता तुम्हारा स्वप्न है, तो वो तो हमसे डरते है। हाँ, तो जितनी चीजें हमको डराती है उतनी वो नहीं है, ये जो विकार जितने डराते हैं ना उतने उनमें पावर ही नहीं है, परंतु डराते बहुत है, क्योंकि सारे दुनिया को सम्मोहन करके रखा है, पागल करके रखा है, सारी दुनिया को विक्षिप्त कर रखा है, इसके लिए ऐसा भास होता है कि ये शक्तिशाली है, पर है नहीं, केवल भास मात्र है, शक्तिशाली हम ही है। ये स्मृति चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो ऐसी ये कुछ मेथड्स है कि जिससे, वैसे तो चर्चा बहुत लंबी हो सकती है परंतु समय का को देखते हुए, इस बीज को नष्ट करना है, हरेक को अपना बीज ढूंढना है पहले, ये बीज कहां से हुआ, बचपन में बोया गया, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी परिस्थिति द्वारा, कब ये बोया गया, किस रीति से बोया गया, हाँ उसको ये जो पौष्टिक उसका जो आहार कहां से आ रहा है, उसको कुछ तो होगा जहां से ये बीज बोया गया है, उसको जानना, समझना, ढूंढना, परखना और फिर नष्ट करना, काम करना उसके ऊपर, महान आत्माओं का संग करना। तो ये था मुरली का दूसरा चरण। तीसरा चरण था कि कर्म ही हमारी पहचान बनेगा, एक है कर्म की शक्ति, एक है संकल्प की शक्ति, एक है कर्म की पावर, एक है संकल्प की पावर, कर्म शक्ति और संकल्प शक्ति। व्यक्ति जो संसार के है उनको तो स्थूल सूक्ष्म नहीं देख सकते, स्थूल ही देखेंगे, मोटी चीजें उनको ज्यादा दिखाई देती है। तो वो एक बात थी। फिर प्रश्न, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर एक, हाँ अपनी स्पीड, वो इसमें पार्टी से मुलाकात में फर्स्ट नंबर में क्या कहा, मेहमान नवाजी नहीं करना है माया की। क्या कहते हैं मेहमान नवाजी चंद्रशेखर भाई जी, कोई भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एकोमोडेशन, माया आई उसको एकोमोडेशन, वो पूछता है 15 दिन, हम कहते हैं नहीं 3 दिन ले लो बस, तो माया आती है कहती है 10 दिन रहना है, हम कहते हैं 10 दिन केवल, 1 महीना रह लो, ये मेहमान नवाजी। फिर क्या करते हैं यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको श्रद्धा में, गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ, पहले तो ये बताओ, माया की मेहमान नवाजी बाद में, उनकी खातिरी में क्या, वही तो उनको चाय, एक मुरली है ना, माया को चाय पिलाते हैं बच्चे, उनसे बात करना, उनको टाइम देना, उनको घुमाना, और क्या करते हैं, अच्छा वाला कमरा देना, अगर अच्छा वाला कमरा दे दिया जाए तो फिर तो एसी वीसी वाला कमरा अगर हाँ क्रोध आया तो वो बहुत अच्छी उसकी मेहमान नवाजी हुई तो आप दूसरे को भेजेगा जाने के बाद, जाओ जाओ और इस भाई को मिलना ये भाई बहुत उनको कमरा भी देंगे और सारा घुमाएंगे भी, उसके साथ उसकी भाषा में बात करना तो और ही ज्यादा खुशी होती है उसको। और फिर थोड़ा साइट सीइंग, हाँ, उनकी बात सुनना, साइट सीइंग करना, सब कुछ, उनको खिलाना पिलाना उनके पीछे, हम नहीं रहे तो किसी और को लगा के रखना कि तुम देखो उसको, तो ये सारी मेहमान नवाजी, माया की मेहमान नवाजी करोगे तो क्या होगा, बीच में फंस जाएंगे, ना आगे ना पीछे। इसके लिए क्या, जो बाप के साथी है वो सदा भी चाहिए, जो साथी नहीं है मेहनत लगती है, युद्ध करना पड़ता है, इसका अर्थ है कि साथ नहीं है। वहां पे स्पीच और स्टेज को चेक करो और बीज को भस्म करो, फिर से वही बात कही है, बीज को भस्म करो। फिर अगला सेकंड प्रसाद, महाप्रसाद कौन सा है, ढक से झाटकू, एक ढक से देखेंगे सोचेंगे वो सब नहीं, गेंगे वाले नहीं, चिल्लाने वाले नहीं, मैं बाबा का और बाप मेरा बस, बाद में से समर्पण। एक जगह प्रश्न है, दूसरा बुद्धि से समर्पण, अर्थात बुद्धि का समर्पण अर्थात उसे खुद भी पचेगा, सोचने का काम ही नहीं, बलि तो है प्रश्न में है, सोचने का काम, उसमें सोचने की जरूरत नहीं, बाबा मिला वो सब मिला नहीं, बुद्धि से समर्पण में उसकी निशानियां क्या है, डिसीजन पावर श्रीमत अनुसार होगा, उसको खुद ही लगेगा कि जो कहा उसको भी जचेगा, दूसरे को भी जचेगा, संतुष्टता होगी, वो दूसरा प्रश्न है, ये थर्ड नंबर प्रश्न है, ये सेकंड थर्ड नंबर प्रश्न है, इंटेलेक्ट, सरेंडर्ड इंटेलेक्ट, तो वो बुद्धि समर्पण वाली बात। तो जजमेंट राइट होगा, जो भी पावर होगा। नेक्स्ट फिर है फर्स्ट, पहला प्रश्न है बाबा के साथ परिक्रमा कैसे कैसे कर सकते हैं, तीन बातें तो वहां बताई और एक्स्ट्रा बताओ। पहला तो क्या बताया कि ऊंची पर, ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ, या फिर जैसे कृष्ण का चित्र है ऊपर, तो ऊपर जाते हो तो कौन सी स्थिति में, बेहद की स्थिति में, या फिर विश्व कल्याणकारी, या अपना ये विश्व कल्याणकारी ना, हाँ विश्व कल्याणकारी स्टेज पर रहो, बेहद की स्टेज पर, तो सारा बॉल की तरह दिखेगा, परिक्रमा स्वतः ही हो जाएगी। एक तो ये विधि है कि उस परम धाम की स्थिति में स्थित होना, दूसरी विधि है दिव्य दिव्य दृष्टि, तीसरा विधि है फरिश्ता, इससे हम विश्व की परिक्रमा, क्यों लगानी है विश्व की परिक्रमा, क्योंकि हमारी रचना है, हम हाँ विश्व कल्याण करिए और मास्टर रचना के बच्चे हैं, इसलिए हमको परिक्रमा लगानी, देख रेख तो हमको करनी पड़ेगी ना, हम माए बाप है उनके, हमारे बच्चों को क्या हो रहा है, कैसे है, पेट बिट भरा है, सोए नहीं सोए, हमें तो देखना पड़ेगा सुख में है शांति में है, तो विश्व की परिक्रमा लगाओ। ये बहुत अच्छा योग है कि फरिश्ता रूप धारण करना और धरती के इर्द गिर्द घूमना, या फिर हम एक जगह खड़े और धरती घूम रही है, और क्या करें, प्यार करना। तो जैसे एक एक खंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, अमेरिका, यूरोप, और एक एक समुद्र आ रहे हैं, उन सबको सकाश, तत्वों को सकाश, तो ये काम करना है। दूसरा है टचिंग, उसकी है हमारी है, उसकी टचिंग शक्तिशाली होगी, उसकी टचिंग में क्लियर होगी और सफलता होगी। ये अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा लाने के लिए क्या किया जाए उस पर काम करना है, इतनी बुद्धि साफ हो कि हमें पता चल जाए कि ये उसी की टचिंग है, नहीं तो इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं, पर ये बाबा ने हमको टच किया ऐसा करना चाहिए, बाबा ने ऐसा बोला है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक एसी चाहिए। चंद्रशेखर भाई, हमको बाबा ने टच किया है कि आप जाओ मधुबन में, आपको वहां 4-10 दिन के लिए रहने के लिए प्रबंध हो जाएगा आपका, बाबा ने कहा है आज ही स्वप्न में। एक माता हमारे पास ऐसी आई थी, 2D एको हम पहले करते थे, अभी कुछ एक हद साल से नहीं कर रहे, तो उस माता को कह रहा है तो आपको इको करना है हार्ट का, तो आप नीचे जाओ या कहीं अपने गांव में जाके करा लो, तो वो चली गई। फिर दूसरे दिन आई ओपीडी में और कहा कि नहीं बाबा ने टच किया आपको ही करना है। अब हम क्या करें, नहीं बाबा ने मुझे अमृत वेला टच किया है कि यही डॉक्टर करेगा, तुम ही करो। तो उसके लिए फिर हमने थोड़ा सा ब्लैक में किया वो मशीन, तो वैसे वो आजकल बहुत चल रहा है ना पीसीपी एनडीटी एक्ट, तो जो भी मशीन को यूज करेगा बहुत सारी चीजें है उसके पीछे, ये होना चाहिए यहाँ रजिस्टर वहां रजिस्टर, कोई भी नहीं कर सकता, नहीं तो वो भ्रण वो सब जो है ना सेक्स डिटेक्शन, तो उसने कहा नहीं आप ही को करना है, तो फिर हमने किया उसका, कोई एंट्री वगैरह नहीं की खाली और उसको कहा ठीक है, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रही है, बाबा ने टच किया कह दिया अभी कैसे करे उसको, अभी उसको कैसे समझाए और किस शब्दों में समझाए, कहती मुझे बाबा ने अमृत वेला टच किया है, हाँ भावना उसकी पूरी करनी थी, तो ये तो तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है कभी कभी, टचिंग जो है ना ये माया का क्षेत्र बन सकता है इसके लिए। हाँ हाँ दे दो, ये ऐसे हर चीज में बाबा को बीच में लाना ये तो मुश्किल काम हो जाता है फिर। तो ये एक तीसरा प्रश्न, बुद्धि सरेंडर। चौथा प्रश्न, छोड़ के जाते हैं ज्ञान, तीन कारण कौन से, बैलेंस नहीं रख पाते, दूसरा अपने संस्कारों को छिपाते हैं, और तीसरा संस्कारों में टकराव संघर्ष। उस दिन डॉक्टर हीना ने क्लास कराया था, जब संघर्ष हो जाए अंदर कब कब जाना है, सात चीजें बताई थी, सात परिस्थितियां ऐसी है कि जैसी वो सात परिस्थितियां आई इधर उधर नहीं भागना है, अंदर भागना है, अंदर इधर इधर, जैसे वो सन्यासी जैसे वो योगी भूकंप आया तो सब भागने लगे दूर दूर, वो कहता है मैं भी भागा परंतु मैं अंदर भागा जहां निष्कंप है, अकंप जहां है, और अकंप केवल आत्मा है। कौन कौन सी परिस्थिति बताई थी, सबसे पहली परिस्थिति जिसमें अंदर भागना है अपमान, दूसरी परिस्थिति हाँ तो हिंदी में बताओ जब अपमान हो जाए तब अंदर भागो, जब संस्कारों में टकराव हो जाए तब अंदर भागो, अंदर भागो जब, बोलो फटाफट श्याम भाई, कौन सी परिस्थिति, वो अपमान में आ गया हाँ, डिसीज हो तब अंदर जाओ, ऐसा नहीं कि बाहर लिखते रहो, और कब अंदर जाओ, डिसेप्शन हो जाए तब अंदर जाओ, जब कोई गलती हो जाए दो नंबर तब अंदर जाओ, बहुत बड़ी गलती हो जाए हमसे तब अंदर जाओ, और दो पॉजिटिव थे ये तो पांच नेगेटिव थे, दो पॉजिटिव जब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए आ जाए तब भी अंदर जाओ, कैसे करे अब इसका। और अंतिम सातवा, श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा है, तो वैसा नहीं कि जो भी मिले नया भाई उसको पूछना है कैसे करने का तीव्र पुरुषार्थ, बस नया मिला मतलब पीछे पकड़ो, पकड़ लो उसको और पूछो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या करना कुछ भी नहीं है। हमने देखा एक बार एक माता आई, इतने प्रश्न पूछने लगी, इतने प्रश्न, हमारे आसपास ही रहते हैं वो, हमारी जो छत है वहां से दिखता है उनका घर, इतने प्रश्न इतने प्रश्न इतने प्रश्न, और वो सारे प्रश्नों के जवाब जाके देखा, ऊपर से देखा तो टीवी चल रहा है वो कोई इच्छा तो है नहीं, ये बस पूछना है, बस पूछने के लिए पूछना है, प्रश्नों की माया है, प्रश्नों से पार जाने की इच्छा नहीं है। हाँ तो वो अंदर भागना है अंदर, तो संघर्ष जब होता है या फिर क्या होता है जब ये सब होता है तो छोड़ के चले जाते हैं। अंतिम प्रश्न फिर मुरली को पूरा करते हैं, अंतिम प्रश्न क्या था, भूमि धरनी, धरनी का क्या, धरनी का दोष या व्यक्ति का दोष, किसका दोष है, बाबा ने कहा सबसे पहले तो हर प्रकार के साधन यूज करो, जितनी फैसिलिटी है सब कुछ करो, उसके बाद में भी नहीं तो शायद धरनी का हो सकता है, पर उसके भी पहले खुद का भी हो सकता है, खुद के अपने संस्कारों का अपनी कमजोरी का, और ऐसा व्यक्ति यदि उस धरनी से जो भी निकलेगा अगर कमजोर आत्मा के द्वारा वो भी ढीले डाले होंगे, पुरुषार्थी नहीं होंगे, धरनी को तो छोड़ना नहीं वही लगे रहना है, चेकिंग करते रहना है, क्योंकि धरनी को उपजाऊ बनाना है, धरनी तो उपजाऊ है वहां अगर नहीं है तो दूसरी ओर से आत्माएं वहां खींच के आ जाएगी, इसके लिए सेवा नहीं हो रही है, कलराठी जमीन है ये सब नहीं। तो पांच प्रश्न, दो पार्टियों से मुलाकात, और पूरी मुरली कर्म पर, कर्म सिद्धांत, कर्म दर्शन, कर्म लीला, उसमें हम शक्तिशाली कितने बने, तो कर्म करते हुए शक्तिशाली बने, और जो कमजोरी है उसको नष्ट करना, जलाना, समाप्त करना, ये काम करना है। शाम शांति।